समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। हाजिर है हम आपके लिए लेकर वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। रोजाना की तरह आपको आज भी लेकर चलेंगे देश भर की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम परिक्रमा के आज के अंक की। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी नमस्कार और भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं आपको भी।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड टू यू एज वेल ऑल आर गुड विशेज ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। वेल भाई दूज, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द ब्रदर सिस्टर बॉन्ड, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन एंड सरफिरोजी, एंड यस विल बिगिन विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। आवर डेटलाइन सेगमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी ऑल वी टोल्ड यू वी आर सेलिब्रेटिंग ब्रदर सिस्टर बॉन्ड टुडे इन आवर परिक्रमा एज वेल। रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ऑल्सो बिजनेस अपडेट्स एंड ट्रिब्यूट्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों पर बल दिया।
कैंपेनिंग गेन्स मोमेंटम इन बिहार असेंबली पोल्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरैक्ट विद बीजेपी एनडीए वर्कर्स अंडर मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम दिस इवनिंग।
महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।
Domestic equity market Sensex surges over 700 points in the afternoon trade while Nifty advances 26,000 mark.
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल से मानवाधिकारों का पालन करने और गजा में नागरिकों को राहत पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग करने को कहा।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India. And yes, today, as we were telling you, it's a very special day on the Indian calendar, a festival which celebrates the eternal bond of love, of trust and affection between brothers and sisters. Well, Bhai Dooj, we'll talk about Bhai Dooj today, celebrated just 2 days after Diwali. And this is a festival. Well, this reminds us that relationships are not built on blood, only on blood, but on care, on sacrifice and the joy of giving. So on this day, as we all know, sisters, they apply a sacred tilak, a vermilion mark, on their brothers' foreheads, praying for their long life, also for their happiness and prosperity. In return, well, this is interesting. Brothers, they offer gifts and then make a heartfelt promise to always stand by their sisters, to protect and to support them through thick and thin.
Mere bhaiya, mere chanda, mere anmol ratan, tere badle main zamane ki koi cheez na lu. Mere bhaiya, mere chanda.
और शगुन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाई दूज के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाई दूज भाई बहन के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है। पीएम ने आशा व्यक्त की कि आज का दिन भाई बहनों के बीच के पवित्र बंधन को और मजबूत करेगा।
हाउ ग्रेट
जी,
एंड इट्स एक्चुअली हार्ट वार्मिंग टू सी दैट इवन इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, well, festivals like Bhai Dooj, they bring families together, and we can almost feel the fragrance of sweets in the air, the aroma wafting through the houses, and to hear the sound of laughter echoing in every home when they sit and talk together, and see those bright smiles as brothers and sisters, they exchange gifts, also memories and blessings.
मेरी बहना है सारी।
सारी उम्र हमें संग रहना
बिल्कुल
है।
हम उम्मीद करते हैं कि सारी जो बहन भाई है उनका बॉन्ड इसी तरह मजबूत रहे।
एंड देयर सेक्रेड लव दे मेंटेन इट थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड दे आर टुगेदर फॉर द होल लाइफ एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स।
जी बिल्कुल, वो सबसे अहम हो जाता है त्योहारों में गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। और शगुन, हम सभी जानते हैं कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, क्योंकि एक ही तरह की कोई रिचुअल, कोई त्योहार या कोई परंपरा भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है।
हाँ,
तो क्यों ना डेडलाइन के सेगमेंट में हम ये भी बताएं कि भारत के किस हिस्से में किस तरह से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता
है। सर फिरोजी, भाई दूज इज सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम्स अक्रॉस इंडिया एंड इवन बियॉन्ड नाउडेज।
जी बिल्कुल, तो बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ भाई दूज को भाई फोटा के नाम से मनाया जाता है। इसमें बहनें अनुष्ठान पूरा होने तक उपवास रखती हैं और अपने भाइयों को मिठाइयां खिलाती हैं। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में इसे भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है और इस दौरान शगुन बहुत ही फेमस स्वादिष्ट एक व्यंजन होता है जिसे पूरन पोली कहते हैं, तो उसे इस अवसर पर जरूर खाया जाता है। इसके अलावा नेपाल देश की बात करें तो इस दिन को भाई टीका के रूप में मनाया जाता है। ये उनके कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है जहां बहनें अपने भाइयों के माथे पर 7 रंग का टीका लगाती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं।
Wow, 7 colors. Great to note that. And of course, according to a legend, on this very day, it's believed Lord Yum, the god of death, visited his sister after a long separation. So she welcomed him with great affection, also offered him sweets and applied the tilak on his forehead. And in return, Yum blessed her and declared that any brother who visits his sister on this day will be blessed with health and prosperity. And thus, Bhai Dooj came to symbolize not just sibling love, but the eternal bond between souls.
बिल्कुल शगुन, और भाई दूज या इसके साथ साथ जो और भी हमारे भारतीय त्योहार होते हैं वो हमें अपनों की अहमियत और रिश्तों के बीच के प्रेम को समझाते हैं। लेकिन अब देखें तो दुनिया इतनी डिजिटल और टेक्निकली एडवांस हो चुकी है कि कहीं ना कहीं हमने अपनों से मिलना भी छोड़ दिया है। हमें उन्हें उनसे मिलना होता है, उन्हें कुछ बताना होता है तो बस एक टेक्स्ट या हम लोग कॉल कर देते हैं। इससे कहीं ना कहीं 1-to-1 पर्सन कम्युनिकेशन जो है वो मिस हो जाता है। जी बिल्कुल, तो इस तरह के जो त्योहार हैं वो एक मौका है जब हम अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकालें, अपनों के साथ बैठें, उनके साथ हंसी मजाक करें, कुछ अच्छे पल बिताएं
एंड ईट टुगेदर।
जी बिल्कुल,
स्वीट्स एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू कांट फॉर सम इनएविटेबल रीजन यू कुडंट विजिट योर सिस्टर और ब्रदर ऑलरेडी, इफ यू हैवंट ऑलरेडी जस्ट गिव योर ब्रदर और सिस्टर अ कॉल टुडे। Well, tell them how much they mean to you. It's a very good day to do that. Share that childhood story which you hadn't in a long time. You still laugh about. Maybe even send them favorite sweet, because Bhai Dooj isn't just about big gifts. It's about small gestures and they carry big meaning, big love. We believe that every festival is an opportunity to celebrate humanity, to bridge distances, heal old bonds and spread smiles as we light the earth and share sweets. So let's also light the lamp of understanding, forgiveness, and family unity.
Tarana disak ya chann kho jaave tenu sang rakhna kuch na hove ya sab ho jaave tenu sang rakhna vatti to vatti चन्न खो जावे तन्नो संग रखना।
How beautiful. Listeners, we are also marking International Day of the Snow Leopard today. So, high up in the peaks of Asia where the air is thin and the snow never melts, lives a creature so rare, it's often called the ghost of the mountains. Well, the snow leopard and Panthera ansia is one of the world's most elusive big cats. These magnificent animals roam the high mountain regions of countries such as Afghanistan, Bhutan, China, India, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, and several others across Central Asia. Yet, despite their vast range, they are rarely seen, Sir Firozi.
बिल्कुल शगुन, और हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ एक सुंदर और रेयर दुर्लभ प्राणी नहीं है, बल्कि ये पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख हिस्सा भी है.
True.
ऐसा इसलिए क्योंकि पारिस्थितिकी श्रृंखला में शीर्ष शिकारी स्नो लेपर्ड होता है, और हिमालयी नीली भेड़ों और आइबेक्स जैसे शिकारियों कि आबादी को नियंत्रित करने में मदद करके ये शिकार और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है.
एंड सर फिरोजी, इट्स अपोलिंग दैट द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इज अंडर थ्रेट.
जी,
द रीजंस फॉर दिस दे लेट्स इन्यूमरेट देम: हैबिटेट लॉस, प्रे डिप्लीशन, पोचिंग एंड द ग्रोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दे ऑल इन डेंजर द स्नो लेपर्ड सर्वाइवल. In fact, Sir Firozi, it's listed as vulnerable on the International Union for Conservation of Nature's Red List and has been protected under international agreements like CITES, CITES, since 1975.
और शगुन, स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस घोषित किया है. और इस दिन का उद्देश्य है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना.
जी सर फिरोजी, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, वेल, अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज आर स्टेपिंग अप देयर एफर्ट्स, फ्रॉम भूटान स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2024-2034, टू नेपाल्स इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान, एंड टू द बिश्केक डिक्लेरेशन एंड समरकंद रेजोल्यूशन, विच यूनाइट्स 12 रेंज कंट्रीज इन शेयर्ड कंजर्वेशन गोल्स. सो प्रोटेक्टिंग द स्नो लेपर्ड इज मोर देन सेविंग अ सिंगल स्पीसीज, इट्स अबाउट प्रिजर्विंग एंटायर माउंटेन इकोसिस्टम्स. एज सर फिरोजी he was telling us, she was giving us the reasons that they sustain life far beyond the peak, supporting sustainable development goals on clean water, क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी.
बिल्कुल शगुन, और आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है.
जी,
ये हिम तेंदुए जैसे हाशिए पर आ चुके जानवरों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी एक मौका है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित और समृद्ध पर्यावरण दें. तो आइए श्रोताओं, 23 अक्टूबर को सिर्फ एक दिवस के रूप में ना मनाया जाए, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और उसे बचाने के संकल्प के रूप में मनाएं. श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर, और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है. सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं शगुन?
यस, फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स फेस्टिवल सीजन, सो टू इंश्योर पैसेंजर कन्वीनियंस, फिरोजी,
जी,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव टुडे रिव्यू द स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेन रनिंग ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन फ्रॉम द वॉर रूम एट रेल भवन इन न्यू दिल्ली. He interacted with officials and took stock of the railway's preparations ahead of Chhath Puja. The war room has been set up to monitor and manage the festival rush at railway stations. In addition to the regular train services, 1,500 special trains will be run during the next 4 days with an average of 300 specials per day. With the efficient arrangements, enhanced passenger services and a commitment to convenience and care, Indian Railways is ensuring that every passenger during his or her rail journey during the festive season is served well. Over a duration of 61 days, from 1st of this month to 30th of next month, over more than 12,000 special trains are being operated across the country. So let us listen to the reaction of passengers on this particular move.
अभी मैं नोएडा से छठ की वजह से घर आ रही हूँ, ट्रेन से ही आ रही हूँ. हर बार ऐसा होता है कि बहुत भीड़ होती है, इतने सारे क्राउड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने देखा कि इधर इट्स दिल्ली पुलिस हो या फिर मैं अभी बिहार में उतरी हूँ, तो हर जगह बहुत अच्छा सिचुएशन था. ट्रेन में भी क्लीनिंग को भी लेके हर एक दो घंटे पे जो क्लीनिंग स्टाफ हैं वो काम कर रहे थे, तो मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा है. और इतने सारे लोगों को मेंटेन करने के मैं रेलवे बोर्ड को एंड जितने पुलिस सर्विसेज है और जितने स्टाफ है, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी.
बहुत अच्छा लग रहा है सर, बाहर भी बहुत अच्छी सुविधाएं थी प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा.
बिहार के प्रस्थान किया हूँ और जीवन में जो है पहली बार ऐसा इतना भीड़ लगाते हुए भी, और बढ़िया तरह से, मतलब सरकार जो है इतना अच्छा व्यवस्था करी है कि जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आराम से हम लोग बैठे हैं.
मेरी फैमिली है वो जा रही है नरकटियागंज बिहार फोर्ता छठ पूजा करने के लिए जा रही है, और जो यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं, हम पहले भी गए हैं साथ में, और अब की बार अगर हम जा रहे हैं तो काफ़ी गुना, अगर हम कंपेयर करें तो 10x अच्छा है उससे.
And listeners, after that, well, we told you that it's International Snow Leopard Day today. So the day it is celebrated every year to raise awareness and promote the conservation of these endangered big cats. And we have a detailed report on this. So let's hear from our correspondent.
Snow leopards in Ladakh are locally referred to as Rir Gyancha, the ornament of the mountains. Ladakh is crucial habitat for snow leopards. It's home to approximately 477 individuals, which is about 68% of the nation's population. These elusive cats are mostly found in rocky, mountainous terrain, particularly in the areas like Himis National Park and the Nubra Shayok Wildlife Sanctuary. The Union Territory of Ladakh has given snow leopard the recognition of state animal in the year 2021. Since then, the work on conservation of snow leopards has increased. In Ladakh, the Snow Leopard Conservancy India Trust, an NGO, has been working in this regard since year 2000 as a part of Snow Leopard Conservancy. Conservation strategies include working with local communities to reduce conflict and create alternative income sources through projects like Himalayan Homestay Program. Research is conducted using methods like camera traps and DNA sampling to better understand the animal's behavior and needs. Dr. Sevang Namgyal, Director, Snow Leopards Conservancy, India Trust, said.
The snow leopard is a very important species, especially for the Himalayan region, because the snow leopard controls the population of the mountain sheep and goats, and that prevents overgrazing, and there is less chances of flooding when that happens. So because of the importance of the Himalayas in the hydrological system of the plains in India, it is very important to conserve species like the snow leopard.
Snow leopards, unlike other big cats like tigers, lions and other leopards, cannot roar. In India, snow leopard can be largely found in high altitude, cold, arid and rugged terrains of Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo reporting from Leh Ladakh.
उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अब देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलेगी। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों को राज्य की नीतियों और संभावनाओं से जोड़ना है।
इन्वेस्ट यूपी का प्रत्येक सैटेलाइट ऑफिस अपनी भौगोलिक और औद्योगिक विशेषता के अनुरूप रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। मुंबई ऑफिस वित्तीय सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और ईएसजी फंड पर ध्यान देगा। बेंगलुरु ऑफिस एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ईवी और डीप टेक सेक्टर पर फोकस करेगा। हैदराबाद ऑफिस फार्मा, डेटा सेंटर और हेल्थ टेक उद्योगों पर केंद्रित रहेगा। चेन्नई ऑफिस ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और हार्डवेयर निर्माण उद्योगों में निवेश आकर्षित करेगा। और नई दिल्ली ऑफिस समर्पित इन्वेस्ट यूपी एवं एशिया यूरोपीय संघ सुविधा कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब केवल उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। सैटेलाइट ऑफिस इस दिशा में सेतु का काम करेंगे। इन सैटेलाइट ऑफिसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष औद्योगिक केंद्रों में अपनी स्थायी मौजूदगी दर्ज करेगा और वैश्विक निवेश मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगा। प्रत्येक सैटेलाइट ऑफिस में एक जनरल मैनेजर, एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर, दो उद्यमी मित्र, दो एग्जीक्यूटिव, दो ऑफिस असिस्टेंट की टीम काम करेगी। पांचों कार्यालयों पर कुल 12 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक धनराशि व्यय होने का अनुमान है। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी लखनऊ।
लिसनर्स, गवर्नर ऑफ सिक्किम Om Prakash Mathur reached Dokhla Pass on 20th October and celebrated Diwali with brave soldiers stationed at Dokhla Pass, which is located at an altitude of 13,400 feet on the India-China border. So, Dokhla Pass came into headlines as part of battlefield tourism. He expressed his happiness on the inclusion of Dokhla, Nathula and Chola for battlefield tourism under the Ranbhumi Darshan program. He urged the people further, to especially youth, to visit Dokhla Pass to witness the historical significance of these areas and gain a deeper appreciation for the sacrifices made by armed forces.
Governor of Sikkim, Om Prakash Mathur, reached Dokhla Pass on 20th October to celebrate Diwali with soldiers stationed at Dokhla Pass, located at an altitude of 13,400 feet on the India-China border. Governor said it marks a significant milestone to foster patriotism while enhancing Sikkim's tourism potential. Beside this, Governor Om Prakash Mathur celebrated Diwali with soldiers stationed at Sherathang helipad by offering them sweets. The program was attended by GOC Black Cat Division Major General M.S. Rathore along with officers and army personnel. While returning from Dokala, Governor stopped at Dichu village where Mathur interacted with local people and extended festive greetings by offering sweets. Under the guidance of Governor, Indian Army provided electricity to Dichu village. Additionally, Governor Mathur visited Nathang Gram Panchayat unit, a border village which falls under Vibrant Village program, where Governor Mathur distributed sweets and exchanged Diwali greetings with locals. With Manush Pradeep Sharma, Moinak Chatterjee for Parikrama from Sikkim.
Now listeners, let's first give you business updates. Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty rallied today after the holiday break as investor sentiment turned positive ahead of a likely US-India trade deal. However, profit booking was seen in both indices during the later half of trade, causing them to close marginally higher. The Sensex gained 130 points to close at 84,556 after crossing the 85,000 mark during intraday trade. The Nifty 50 advanced 23 points to settle at 25,891, having traded above the 26,000 level earlier in the session. In the forex market now, the rupee appreciated by 8 paise to trade at 87 rupees and 85 paise a short while ago. In the global crude oil market, Brent crude was trading 5.3% up at $65.91 per barrel, and WTI crude was also trading 5.6% up at $61.77 per barrel in intraday trade.
शगुन आर्थिक जगत की ये खबरें तो हमने ले ली, अब क्यों ना खेल जगत की खबरें भी दे दी जाए अपने श्रोताओं को.
यस सर फिरोजी, इन मेंस क्रिकेट चेजिंग अ टारगेट ऑफ 265 रन सेट बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर 252 फॉर 6 इन 44 ओवर्स इन द सेकेंड ओडीआई ऑफ द 3 मैच सीरीज एट एडिलेड व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सर फिरोजी और शगुन के साथ, और कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है.
On 23rd of October 1778 was born Kittur Chennamma, the Queen of Kittur.
ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದರ ಕಡ್ಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನಡಗ ಎದುರಾಳಿ ನಾ ಎದೆಯ ಸೀಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಳೋ ಮನ್ನ ತಲುವರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಸೈನ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರ.
ಶಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಹೂ ಲೆಡ್ ಎನ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ 1824.
Right from a young age, she acquired all the skills required to win a battle, including horse riding, sword fighting, and archery, and became well known in no time for her bravery.
The British took over the administration of Kittur in 1824 under the doctrine of Lapps. When the Queen protested against the British occupation, the British army attacked Kittur in 1824 with 20,000 men and 400 guns.
The intention was to confiscate her jewels and treasures worth rupees 1.5 million, making her economically weak, and then dethrone her.
Despite having a numerically inferior force, Chennamma put up a tough fight and won the first round of battle. The British army faced massive losses, and eventually two British officers, Sir Walter Elliot and Mr. Stevenson, were taken as hostages, giving Chennamma an upper hand in the negotiations.
Chennamma agreed to release the hostages if the British ended the war and allowed her son to rule. Commissioner Chaplin from the East India Company took the offer, and the hostages were released.
However, in an unforeseen turnaround, the British troops launched a second round of attack. They could not take the humiliation of losing to a woman from a small village and roped in armies from Mysore and Solapur. They also convinced two of her soldiers to betray her by mixing cow dung and mud with the gunpowder used for cannons.
This time, she was captured and imprisoned for life at Belhungal Fort. She passed away on the 21st of February 1829. Rani Chennamma was buried in Belhungal Taluk. Her legacy and first victory are still commemorated in Kittur during the Kittur Utsav held from the 22nd to 24th of October.
On 23rd of October 1934, Mahatma Gandhi resigned from the Congress Party and quit politics. He said he withdrew from active politics and even resigned his membership of the Congress because he wanted to devote himself fully to the constructive program and Harijan welfare.
He did not disagree with the party's position, but felt that if he resigned, his popularity with Indians would cease to stifle the party's membership, which actually varied, including communists, socialists, trade unionists, students, religious conservatives, and those with pro-business convictions, and that these various voices would get a chance to make themselves heard.
He had also come to believe that the leading members of the Congress Party had adopted non-violence as a political means and not as the fundamental essence. In place of political activity, Gandhiji then concentrated on his constructive program of building the nation from the bottom up, educating rural India, which accounted for 85% of the population, was not an easy task.
Gandhiji continued his fight against untouchability, promoted hand spinning, weaving and other cottage industries to supplement the earnings of the underemployed peasantry. Gandhiji himself went to live at Sevagram, a village which later became the center of his program of social and economic uplift.
आज भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक संजय गुप्ता का भी जन्मदिन है. इन्होंने कांटे जिंदा, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला और जज्बा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. 2017 में इन्होंने बनाई ऋतिक रोशन की अभिनीत फिल्म काबिल, जो काफी चर्चित रही, और इसी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं.
कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन से मुझे तेरी आदत.
Listeners, today we're also remembering Mabel Carter, the country musician and among the first to use Carter Scratch, with which she helped to turn the guitar into a lead instrument. I have chosen a beautiful song. This is Wildflower by Mabel Carter. How beautiful, listeners, today I have found another lyricist and playwright, Adolph Green, with longtime collaborator Betty Comden. He penned the screenplays and songs for musicals on Broadway and in Hollywood, and also he was inducted into the Songwriters Hall of Fame. This happened in 1980, and also American Theatre Hall of Fame in 1981. This is called New York, New York.
First time in New York.
It is.
Well, listeners, this is part of a musical that he created.
आज जन्मदिन है प्रमुख रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता प्रभास का. इन्होंने 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की. 2005 में इन्होंने एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म छत्रपति में अभिनय किया. इसके अलावा 2015 में आई राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग ने इन्हें हिंदी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, और इस फिल्म में 600 करोड़ रुपए की कमाई के साथ भारत में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया. वहीं इस रिकॉर्ड को बाहुबली 2 ने तोड़ा, और इसने 10 दिनों में सभी भाषाओं में 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया. आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत.
I'm
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की।
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।